अध्याय दो, पश्चिमीकरण। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए। यह काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालों से भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिकी संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास और मूल्य लेकर आए थे। नई औद्योगिकी और उसके कारण संचार साधनों में होने वाली क्रांति की सहायता से अंग्रेजों ने देश का ऐसा एकीकरण किया जैसा उसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार अंग्रेजी राज की स्थापना से स्थानीय लड़ाइयाँ सदा के लिए खत्म हो गई, जो अंग्रेजों से पहले भारत में निरंतर चलती रहती थी और जो व्यक्तियों तथा समूहों के लिए सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण साधन थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने धीरे धीरे भूमि का सर्वेक्षण करके राजस्व निर्धारित किया, आधुनिक अधिकारी तंत्र, सेना और पुलिस की स्थापना की, अदालतें स्थापित करके कानून की संहिताएं बनाई, संचार साधनों, रेलों, डाक और तार, सड़कों व नहरों का विकास किया, स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की और इन सब के द्वारा एक आधुनिक राज्य की नींव डाली। अंग्रेज अपने साथ छापे खाने भी लाए और इसने भारतीय जीवन और चिंतन में जो गंभीर तथा बहुविध परिवर्तन उत्पन्न किए उन पर अलग से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक स्पष्ट परिणाम ज्ञान को बहुसंख्यक भारतीयों तक पहुंचा दिया और ज्ञान अब कुछ एक पुस्तैनी समूहों का विशेषाधिकार नहीं रहा। समाचार पत्रों ऐसे देश के दूर दूर भागों में लोगों को यह अनुभव होने लगा कि वे सामान्य सूत्रों में बंधे हुए हैं और बाह्य जगत में होने वाली घटनाएं उनके जीवन और भला या बुरा का प्रभाव अवश्य डालती हैं। यूरोप के ईसाई धर्म प्रचारक अंग्रेजों के आने से पहले से भारत को जानते थे, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दिनों में भारत में यूरोपीय धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यह रोक 1813 में उठाई गई जब ब्रिटिश संसद ने नई लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें प्रदेश की अनुमति दी। इससे अंत में सारे उपमहाद्वीप के द्वार धर्म प्रचारकों के कार्य के लिए खुल गए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने जागरूक भारतीय जनमत के समर्थन में ऐसी कुरीतियों को मिटाया जैसे सती प्रथा, बालिका हत्या, मानव बलि और दास प्रथा, किंतु मेरा उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों की सूची बनाना नहीं है। संक्षेप में कहना यही है कि अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव गहरा, बहुमुखी तथा फलदायी था। 150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यत्र में पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द औद्योगिकी संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। इस शब्द की उपयुक्तता पर विचार मैं बाद में करूंगा, पर तब तक मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अस्पष्ट और सर्वग्राही स्वरूप के बावजूद मैं जानबूझकर इसका प्रयोग कर रहा हूं। किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण में ऐसे शब्द की आवश्यकता है जब निहित वस्तुओं के साथ साथ उनसे उद्भूत प्रक्रियाएं अत्यधिक जटिल हों, तथा यह आशा करना यथार्थवादी नहीं है कि किसी सरल एक आयामी और सर्वथा स्पष्ट अवधारणा से उनकी पूर्ण व्याख्या हो सकेगी। अवधारणा के स्तर पर पश्चिमीकरण और उसकी सामान्यतः सहवर्ती दो अन्य प्रक्रियाओं औद्योगीकरण और नगरीकरण के बीच अंतर करना आवश्यक है। एक ओर तो औद्योगिक पूर्व विश्व में भी नगर मौजूद थे, यद्यपि वे पश्चिम में औद्योगिक क्रांति से बनने वाले नगरों से महत्वपूर्ण बातों में भिन्न थे। एक तो उन्हें सहारे के लिए बड़ी देहाती आबादी की जरूरत होती है, जिसके कारण प्राचीन और मध्ययुगीन देश कुछ बड़े बड़े नगरों के बावजूद मुख्यतः कृषि प्रधान देश ही बने रहे। फिर यद्यपि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नागरीकरण की गति बढ़ गई और अत्यधिक नगर क्षेत्र आमतौर पर अत्यधिक उद्योग प्रधान क्षेत्र भी होते हैं, फिर भी नागरीकरण औद्योगीकरण का मामूली कार्य क्षेत्र नहीं है
अंत में यद्यपि अधिकांश पश्चिमीकृत समूह आमतौर पर बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं, फिर भी यह चेतावनी देना जरूरी है कि पश्चिमीकरण और नागरीकरण एक ही चीज नहीं है। भारत जैसे देश में भी देहाती क्षेत्र में रहने वाले ऐसे समूह मिल जाएंगे जिनकी जीवन शैली का बहुत से नागर समूहों की अपेक्षा अधिक पश्चिमीकरण हो चुका है। ऐसे समूह उन क्षेत्रों में ही मिलेंगे जहां चाय, कॉफी आदि के बागान हैं या व्यावसायिक फसलें उगाई जाती हैं अथवा जिनसे भारतीय सेना के लिए रंग रूट भर्ती करने की परंपरा है। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल नई संस्थाओं, उदाहरण के लिए समाचार पत्र, चुनाव, ईसाई धर्म प्रचारक का समावेश होता है, बल्कि पुरानी संस्थाओं में भी मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। इस भांति यद्यपि विद्यालय भारत में अंग्रेजों के आने के पहले से मौजूद थे, पर वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों से भिन्न थे। केवल दो ही महत्वपूर्ण भिन्नताओं का जिक्र करें तो पुराने विद्यालय उच्च जातियों के बच्चों तक सीमित थे और अधिकतर पारंपरिक ज्ञान का ही प्रसार करते थे। सेना, सरकारी नौकरी और न्यायालय जैसी संस्थाएं भी ऐसे ही पश्चिमीकरण में कुछ मूलभूत अधिमान्यताएं निहित थी। एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जिसमें कोई अन्य मूल्य सम्मिलित है वह है जिसे मोटे तौर पर मानवतावाद कहा जा सकता है, जिससे अभिप्राय है जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु और लिंग भेद के बिना मनुष्य मात्र की भलाई के लिए कर्मठ भावना। यद्यपि समानतावाद और लौकिकीकरण दोनों ही मानवतावाद में निहित है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध द्वारा किए गए बहुत से सुधारों की जड़ में मानवतावाद ही था। अंग्रेजी दीवानी कानून, दंड कानून और कार्यविधि कानून लागू करने से वे असमानताएं खत्म हो गई जो हिंदू और इस्लामी न्याय शास्त्र का अंग थी। उदाहरण के लिए अंग्रेज पूर्व हिंदू कानून में दंड अपराधी और उससे आहत व्यक्ति की जाति के अनुसार बदलता रहता था। इस्लामी कानून में गैर मुस्लिमों की साक्ष्य स्वीकृत न होती थी और हिंदू तथा मुसलमान दोनों अपनी संहिताओं को दैवी मानते थे। यद्यपि प्रारंभिक हिंदू विधि शास्त्रियों ने लोक प्रचलित कानून को पर्याप्त महत्व दिया था, ओमैले के अनुसार अंग्रेज कानून व्यवस्था लागू करने के दो क्रांतिकारी परिणाम हुए, समानता के सिद्धांत की स्थापना और निश्चित अधिकारों की चेतना की सृष्टि। अधिकारों की चेतना धीमे बढ़ने वाला पौधा था क्योंकि निम्न वर्गों की अत्यधिक दीनता उन्हें समानता कानूनों की व्यवस्था से लाभ उठाने और कानूनी कार्यवाही द्वारा अपने अधिकारों को मनवाने से रोकती थी, किंतु न केवल अपनी अत्यधिक दीनता के कारण बल्कि अपनी अशिक्षा और गरीबी और न्याय व्यवस्था की जटिलता, भारीपन, खर्चीलेपन और धीमी गति के कारण भी अधिकांश गांववासियों के लिए बहुत ही कठिन था कि अपने अधिकारों को मानवता और अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए वे अदालतों का सहारा लें। पियर ने ठीक ही कहा है कि अदालतें जनता के लिए ऐसी मशीन में सिक्का डालने के समान थी जिसकी कार्य प्रणाली आदमी की समझ में न आती थी और जिनसे न्याय के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के निकल आने की संभावना थी। एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति हुई दास प्रथा के अंत में और कम से कम सिद्धांत की दृष्टि से धर्म, नस्ल और जाति के भेदभाव बिना सबके लिए नए स्कूलों और कॉलेजों के खुलने में। सिद्धांत में नए आर्थिक अवसर भी सबके लिए थे। यद्यपि परंपरा से बड़े बड़े नगरों की और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाएं थी, सुधारों और अंग्रेज न्याय व्यवस्था लागू होने में यह निहित था कि उन रीति रिवाजों को बदला जाए या समाप्त किया जाए जो धर्म का अंग माने जाते थे। इसका अर्थ था धार्मिक रिवाजों को बनाए रखने के लिए उनका तर्क बुद्धि और मानवता की कसौटी पर संतोषजनक सिद्ध होना जरूरी था। यद्यपि अंग्रेजी राज की प्रगति के साथ तर्क बुद्धि और मानवता अधिकाधिक व्यापक, गहरे और सशक्त होते गए और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद दोनों के ही प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बल्कि वे एक सचमुच बड़ी छलांग में आगे बढ़ गए हैं। स्वाधीन भारत में ने अस्पृश्यता पर जो प्रहार प्रारंभ किया है
वह इस प्रसार का उल्लेखनीय उदाहरण है। किसी विदेशी सरकार को यदि साहस न हो सकता था कि वह अस्पृश्यता के प्रचार को किसी भी रूप में अपराध घोषित करे या हरिजनों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश और गांव में ऊंची जातियों के कुओं से पानी लेने के अधिकार को लागू कर सके, मानवतावाद के परिणाम स्वरूप अकाल का सामना करने, महामारियों को रोकने और स्कूल, अस्पताल और अनाथालय स्थापित करने के लिए प्रशासनात्मक उपाय किए गए, मानवतावादी कार्यों में विशेषकर भारतीय समाज के उन अंशों को जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, हरिजनों, स्त्रियों, अनाथों, कोढ़ियों और जनजातियों को शिक्षा और चिकित्सा के साधन सुलभ कराने में ईसाई धर्म प्रचारकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। जाति अस्पृश्यता, स्त्रियों की हीन स्थिति, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी हिंदू प्रथाओं की उनकी आलोचना भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। अंग्रेज पाश्चात्य तीव्र आलोचना के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की सैद्धांतिक और संस्थागत दोनों स्तरों पर फिर से व्याख्या हुई और जाति और अस्पृश्यता के प्रति हिंदू उच्च वर्गों का दृष्टिकोण बदलने में एक महत्वपूर्ण तीव्र निम्न जातियों विशेषकर हरिजनों का मुसलमान या ईसाई बनाया जाना भी था। किसी भी पश्चिमी देश की प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण, उदाहरण के लिए डेनियल लर्नर ने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों की उपयुक्तता पर विचार करके आधुनिकीकरण को स्वीकार किया है। उसके अनुसार आधुनिकीकरण में सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना निहित है, पर प्रत्यक्षवादी भावना ही पर्याप्त नहीं है, संचार व्यवस्था में क्रांति भी आवश्यक है। आधुनिकीकरण की विशेषता बढ़ता हुआ नागरीकरण भी है, जिसके परिणाम स्वरूप साक्षरता का प्रसार होता है। साक्षरता के माध्यम से जन्य संघात बढ़ता है और अंत में माध्यमों का बढ़ा हुआ संघात अधिक व्यापक आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक साझेदारी से संबद्ध है। आधुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीलता भी निहित है। गतिशील समाज तर्क बुद्धि को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि चुनाव की संभावनाएं व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है और पुरस्कारों को प्रतिबंधित करती है। लोग समाज के भविष्य को निर्धारित की बजाय परिवर्तनीय और अपनी निजी उन्नति को विशेषाधिकार की बजाय उपलब्धियों से जुड़ी मानने लगते हैं। पश्चिमीकरण शब्द कई कारणों से अनुपयुक्त है। वह अत्यधिक स्थानीय लेबल है और जिस आदर्श का अनुकरण किया जा रहा है वह कोई पश्चिमी देश न होकर रूस, तुर्की, जापान या भारत हो सकता है। लर्नर द्वारा पश्चिमीकरण की बजाय आधुनिकीकरण को स्वीकार करने की एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि मध्य पूर्व में जो उसका कार्य क्षेत्र था, शिक्षित लोग आधुनिक पैकेज चाहते हुए भी अमेरिका में बना या कि रूस में बना लेविल स्वीकार नहीं करते थे। पश्चिमीकरण से यह चिड़ मध्य पूर्वी स्वसमूह केंद्रता का परिणाम है, जो राजनीतिक दृष्टि से उग्र राष्ट्रीयतावाद और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विदेशी भय में अभिव्यक्त होती है। उपनिवेश विरोध द्वारा बोई गई घृणा का की फसल होती है। विदेशी अभिभावकत्व के हर रूप की अस्वीकृति में आधुनिक संस्थाएं चाहिए आधुनिक विचारधाराएं नहीं, आधुनिक सत्ता चाहिए आधुनिक उद्देश्य नहीं, आधुनिक धन चाहिए आधुनिक मनीषा नहीं, आधुनिक वस्तुएं चाहिए आधुनिक व्यवसाय नहीं। पश्चिम को अस्वीकार करने की तीव्र लालसा कुछ मध्य पूर्वी नेताओं को कुछ आचरणगत और संस्थागत दबावों की अपेक्षा के लिए और उनके बदले हुए नए रास्तों और जोखिम भरी पगडंडियों की परीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, जो उन सभी देशों यूरोप, अमेरिका और रूस में समान है जहां आधुनिकीकरण हो चुका है। इस प्रकार पश्चिम से दीर्घकालीन संपर्क का एक परिणाम है एक ऐसे विशिष्ट उच्च वर्ग का उदय, जिसका पश्चिम के दृष्टि प्रतिदृष्टिकोण उभयभावी है। इस उभयभाविता का विरोध मूलक पक्ष तरह तरह से और संस्कृति तथा सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में अभिव्यक्त हो सकता है। वास्तव में उसमें बुद्धि विरोधी बल्कि आत्म विध्वंसक कार्य की संभावनाएं निहित है। गैर पश्चिमी देशों में साम्यवाद के बड़े भारी आकर्षण का
एक कारण है उसका पश्चिम विरोध, जो साम्यवादी साम्राज्यवाद विरोध और पूंजीवादी विरोध में प्रकट होता है, दलितों, मजदूरों और प्राचीन राष्ट्रों के हित का समर्थन करने के कारण उसे मानवतावादी सिद्धांत समझा जाता है और उसकी यह भविष्यवाणी की पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का अंत और वर्गहीन समाज की स्थापना अनिवार्य है, विज्ञान का भ्रम उत्पन्न करती है। वह गैर पश्चिमी बुद्धिजीवी को विज्ञान और मानवता के नाम पर न केवल आक्रामक पश्चिम को बल्कि स्वयं अपने समाज और उसकी परंपराओं को अस्वीकार करने में सहायक होती है। वह उसके लिए भविष्य के साथ प्रगति विज्ञान और मानवतावाद के साथ तादात्म्य कर सकना संभव बनाती है। कोई समाज वैज्ञानिक इस बारे में कैसे निश्चित कह सकता है कि अमुक परिवर्तन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ही अंग है? यह कठिनाई केवल तर्क और दर्शन संबंधी ही नहीं है, बल्कि परिवर्तन की अनुभव सिद्ध प्राकल्पनाओं के वास्तविक विश्लेषण में उससे बचना संभव नहीं। रॉबर्ट बिल्लाह ने ठीक ही कहा है, जहां आधुनिकीकरण का अर्थ लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के अधिक बुद्धिसंगत होने के बजाय केवल लक्ष्य प्राप्ति में अधिक प्रभावी होना है, वहां बड़ी गंभीर विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रत्यक्षतः आधुनिकीकरण की ऐसी प्रक्रिया घटित हुई है, पर वे आंशिक अथवा बाधित आधुनिकीकरण की उपज है, स्वयं आधुनिकीकरण का अनिवार्य परिणाम नहीं। इस भांति बिल्लाह के अनुसार आधुनिकीकरण में लक्ष्यों की बुद्धि संगति निहित है, जिसका अर्थ है कि समाज द्वारा चुने गए लक्ष्य बुद्धि संगति और विचार विमर्श के विषय होने चाहिए। किंतु यहाँ इस बात की ओर इशारा करना जरूरी है कि अंतिम विश्लेषण में सामाजिक लक्ष्य मूल्यगत वरेण्यताओं को प्रकट करते हैं और इसलिए अबुद्धिसंगत होते हैं। लक्ष्यों पर सार्वजनिक विचार विमर्श से किसी प्रकार भी उनके बुद्धिसंगत होने का आश्वासन नहीं मिल सकता। बुद्धिसंगति का दृढ़ निर्देश सामाजिकरण कार्य के केवल साधनों के विषय में हो सकता है, साध्यों के विषय में नहीं। आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ, उनका प्रयोग उनके अच्छे बुरे होने को नहीं सूचित करता, जबकि आधुनिकीकरण साधारणतः इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि वह अच्छा है। पर पश्चिमीकरण में अन्य कठिनाइयां हैं, जैसा हम देख चुके हैं। पश्चिमीकरण से प्रभावित व्यक्तियों में अक्सर पश्चिम के प्रति राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक विरोध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 18वीं और 19वीं शताब्दियों में पश्चिमी संस्कृति के सभी तत्वों का उद्गम पश्चिम में नहीं हुआ था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम की औद्योगिकी संबंधी श्रेष्ठता के कुछ अवयव प्राचीन सुदूर पूर्व और मध्ययुगीन भारत से आए थे। बारूद, छापे के टाइप और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। लिन व्हाइट जूनियर ने कहा है, प्राकृतिक ऊर्जा और मानव उद्देश्यों के लिए उसके उपयोग की सजग और सामान्यीकृत लालसा 13वीं शताब्दी के यूरोप द्वारा एक ऐसी धारणा का उत्साहपूर्ण अंगीकार है जिसका उद्गम 12वीं शताब्दी के भारत में हुआ था। शाश्वत गति की धारणा को अरबों ने उसी प्रकार यूरोप वासियों तक पहुंचाया जैसे उन्होंने हिंदू अंकों और दशमलव प्रणाली को पहुंचाया था। भारतीयों तथा अरबों और मध्ययुगीन यूरोप वासियों में फर्क यह था कि यूरोप वासियों ने शाश्वत गति की धारणा में गहरी दिलचस्पी ली और वे उसकी चालाक शक्तियों के विविधीकरण के तथा उसके कुछ उपयोगी काम लेने के प्रयासों में जुट गए। इसी प्रकार प्रचारवादी ईसाई धर्म को पश्चिमी विशेषता माना जाता है और यह निर्विवाद है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के आधुनिकीकरण में निर्णायक योग दिया है। पर संसार के अन्य धर्मों की भांति ईसाई धर्म का उदय भी एशिया में हुआ था। पश्चिमीकरण में कुछ तत्व सामान्य होने पर प्रत्येक यूरोपीय देश और साथ ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक सामान्य संस्कृति के विशेष रूपांतर के प्रतिनिधि हैं और विभिन्न देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में स्पष्ट ही पश्चिमीकरण का अंग्रेज आदर्श ही सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि 1947 से अमेरिकी और रूसी आदर्श भी अधिकाधिक सार्थक होते जा रहे हैं। मैंने अंग्रेज आदर्श को स्थिर संपूर्ण और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में वितरण के लिए तैयार और भली भांति पैठ किया हुआ माना है। मैं जानता हूं कि ऐसी धारणा इतिहास की दृष्टि से अमान्य होगी, पर शोध की दृष्टि से उससे छुटकारा नहीं। पश्चिमीकरण एक अंतर्भूतकारी संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा है। उसमें एक छोर पर पश्चिमी औद्योगिक से लगाकर दूसरी छोर पर आधुनिक विज्ञान और आधुनिक इतिहास लेखन तक विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित हैं। उसकी अविश्वसनीय संश्लिष्टता इस बात में देखी जा सक्ती है कि पश्चिमीकरण के विभिन्न पक्ष कभी तो एक होकर किसी प्रक्रिया विशेष को पुष्ट करते हैं, कभी एक दूसरे के विपरीत पड़ते हैं और कभी कभी एक दूसरे से अलग रहते हैं। कुछ उदाहरण देकर मैं अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। भारत में फर्श पर बैठकर भोजन करने की परंपरा थी। भोजन या तो पत्तों या धातु पीतल या कांसे या चांदी की थालियों में परोसा जाता था। उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों में भोजन एक धार्मिक कृत्य था। भोजन बनाते समय स्त्रियों का कर्मकांड की दृष्टि से पवित्र होना आवश्यक था, क्योंकि परिवार के सदस्यों को देने के पहले भोजन का पारिवारिक देवता को भोग लगाया जाता था। पुरुष और बच्चे पहले खाते थे और वयस्क पुरुष भोजन के समय पवित्र होकर बैठते थे। इसका अर्थ था कुर्ता कमीज उतार कर या तो रेशमी धोती और चादर पहना। रेशम कर्मकांडी दृष्टि से सूत की अपेक्षा पवित्र माना जाता है, या ताजा धुली हुई सूती धोती या चादर। भोजन के बाद पतले अपवित्र हो जाती थी और उन्हें फेंक दिया जाता था। जूठी पतलों के स्थान पर गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता था। अब बड़े बड़े कस्बों और शहरों में शिक्षित और पश्चिमीकृत समूह अधिकाधिक मेजों पर खाना पसंद करते हैं। परिवर्तन की सबसे स्पष्ट विशेषता है नई प्रविधि, कुर्सियों और मेज अविकारी इस्पात के बर्तन, चम्मचे और उसमें और भी बातें निहित हैं। इसका अर्थ है किसी हद तक लौकिकीकरण और पारस्परिक शैली से भिन्न शैली को जानबूझकर अपनाना, क्योंकि यह प्रतिष्ठा सूचक अथवा सुविधाजनक अथवा दोनों है। जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि भोजन का नया ढंग लौकिकीकरण में वृद्धि में योग देता है, क्योंकि भोजन के बाद मेज को गोबर से पवित्र नहीं किया जा सकता और भोजन के पहले और बाद के पारंपरिक कर्मकांड को छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों में तो स्कूलों और दफ्तरों के समय से भोजन का समय निर्धारित होता है और घर की भोजन परोसने अथवा देखभाल करने वाली बड़ी बूढ़ी स्त्री को छोड़कर परिवार के सभी लोग एक साथ खाने बैठते हैं। भोजन संबंधी परंपरागत निषेधों के शिथिल पड़ने से उन सब तरकारियों का खाना बढ़ जाता है जिन पर अभी तक रोक थी, जैसे टमाटर, चुकंदर, गाजर, प्याज, मूली, अंडे तो धीरे धीरे शहरी मध्यवर्गीय शाकाहारी जातियों के भोजन का अंग ही बनते जा रहे हैं। संक्षेप में ऊंची आमदनी और नागरीकरण से जीवन शैली का लौकिकीकरण होता है, जिसमें भोजन की प्रविधि के साथ साथ भोजन के समय और भोजन की वस्तुओं में मूलभूत परिवर्तन शामिल है। मेज पर खाना भी जो लौकिकीकरण की उपज है, लौकिकीकरण को और आगे बढ़ाता है। दूसरी शब्दों में नई प्रविधि से लौकिकीकरण को और भी सहारा मिलता है। भोजन के संबंध में एक नया दृष्टिकोण उभरने लगता है। उसे इस दृष्टि से आधिकारिक देखा जाने लगता है कि उसमें स्वस्थ और क्षमता में वृद्धि होती है या नहीं, और इस दृष्टि से उस पर विचार निरंतर घटता जाता है कि परंपरा से सम्मत है अथवा वर्जित। किंतु इससे भिन्न ऐसे भी उदाहरण है जिनमें आचरण के एक अच्छे या स्तर में पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप किसी अन्य संबद्ध क्षेत्र या स्तर के में पश्चिमीकरण नहीं होता। दोनों अलग अलग रहते हैं। 1952 की गर्मियों में मैसूर के अपने कार्य क्षेत्र रामपुर में मैंने एक शाकाहारी बुलडोजर के चालक को देखा जो मुखिया के एक खेत में कुछ एकड़ जमीन समतल कर रहा था। चालक राज्य के सबसे बड़े नगर बेंगलुरु का तमिल भाषी था और गांव में वह मनोरंजन के लिए जादू टोने के पारंपरिक खेल दिखाया करता था। उसे आजीविका के लिए बुलडोजर चलाने और मनोरंजन के लिए जादू टोने के खेल दिखाने में कोई असंगति न दिखती थी। यहाँ यह कहना उचित होगा कि उपर्युक्त उदाहरण मेरे विचारणीय होने पर भी न तो अनोखा है न असाधारण। कारखानों में काम करने वाले भारतीय मजदूर जो आमतौर पर अत्यंत अल्प शिक्षित होते हैं अपने धार्मिक ऐन्द्रजालिक रुझान और औद्योगिक की तक की ले आते हैं जिसके बीच वे काम करते हैं। इस भांति यह संभव है कि कोई छापे खाने वाला दिन का कार्य प्रारंभ करने के पहले अपना मशीन पर रोली का टीका लगाए भारत भर में दशहरे के वार्षिक त्योहार के अवसर पर अपने धंधे के औजारों को सफाई करने और उनके आगे सिंदूर धूप तथा फूल माला चढ़ाने का आम रिवाज है। यह न केवल गांव के बढ़ई सुनार या और कुम्हार के बारे में बल्कि मिलों और कारखानों के शहरी मजदूरों के बारे में भी सही है। मोटरों को धोकर उन पर सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें फूलों के हारों से सजाया जाता है। सिलाई की मशीनों, टाइपराइटरों और पुस्तकों के साथ भी यही होता है। इस प्रकार पश्चिमी औद्योगिकी के उपयोग का यह अर्थ नहीं कि उपयोग करने वालों ने बुद्धिवादी और वैज्ञानिक विश्व दृष्टि स्वीकार कर ली है, बिल्कुल नहीं। रामपुर के बुलडोजर चालक ने उसे चलाने के लिए आवश्यक यांत्रिक गतियों को भली भांति सीख लिया था और वह छोटी मोटी मरम्मत भी कर लेता था, पर वह न केवल अपने धार्मिक विश्वासों में परंपरावादी था बल्कि उसने जादू टोना भी सीख लिया था जिसका ज्ञान आमतौर पर छोटे समूहों तक ही सीमित है। उसे बुलडोजर चलाने और जादू टोने के खेल दिखाने में कोई असंगति न दिखती थी। दोनों क्षेत्र पूरी तरह एक दूसरे से अलग रखे गए थे, किंतु दशहरे के त्योहार पर औजारों और मशीनों की पूजा अलग अलग रखने के कुछ अधिक है। वह पारंपरिक धार्मिक ऐन्द्रिक जालिक विश्वासों को आधुनिक औद्योगिकी के नए जगत में ले आने का सूचक है। इसके अतिरिक्त ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पश्चिमीकरण ने ऐसी शक्तियों को उत्पन्न किया है जो एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं। यह शायद उसके परवर्ती आचरणों की अपेक्षा प्रारंभिक चरणों में अधिक दिखाई पड़ता है। यद्यपि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि अल्पकालीन असंगतियों के बाद में दूर ही हो जाए। उदाहरण के लिए छपाई के प्रारंभ होने से न केवल आधुनिक ज्ञान का बल्कि पारंपरिक महाकाव्यों, पुराणों, संतों की जीवनियों और अन्य धार्मिक साहित्य का भी प्रसारण संभव हो गया। शांति तांगरी ने लिखा है कि सन 1877 तक 3064 पुस्तकें देशी भाषाओं में, 729 प्राचीन भाषाओं में और 544 अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। इनमें से 2451 मौलिक थी, 2003 में पुनः प्रकाशित थी और 436 अनुदित थी। और यद्यपि इस सामान्य साहित्य का बड़ा अंश निम्न कोटि का था और परंपरागत कट्टरपंथी दृष्टिकोण से पुराण या धर्म से संबंधित था, फिर भी संप्रेषण की क्रांति का श्री गणेश हो चुका था। राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण ने न केवल राष्ट्रीयतावाद को बल्कि पुनरुत्थानवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, तीव्रतर भाषाई चेतना और प्रादेशिकता को जन्म दिया है। परिस्थिति इसलिए और भी हैरानी डालती है कि पुनरुत्थानवादी आंदोलन अपने विचारों के प्रचार के लिए पश्चिमी ढंग के स्कूल, कॉलेजों, पुस्तकों, पुस्तिकाओं और पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं। जब पश्चिमी प्रेरणा और भारतीय प्रतिक्रिया के बीच कड़ियां थोड़ी ही हो तो इस प्रक्रिया की पहचान के बारे में कोई संदेह संभव नहीं, पर जब कड़ियां बहुत हो अथवा सतह पर दिखाई पड़ती हो तो संदेह हो सकता है। इस भांति मुद्रण और नगरों के विकास के परिणाम स्वरूप साक्षरता में वृद्धि को देख सकना आसान है, पर पश्चिमीकरण और पिछड़े वर्ग आंदोलन अथवा आर्य समाज अथवा 20वीं शताब्दी में भाषाई चेतना के बीच संबंध पहचानना कठिन होता है। मैं सोचता हूँ कि पश्चिमीकरण शब्द के साथ प्रारंभिक माध्यमिक अथवा तृतीयक विश्लेषण लगाना अधिकाधिक आवश्यक होगा। माध्यमिक और तृतीयक की बजाय प्राथमिक पश्चिमीकरण में पारंपरिक संबंध सरल और सीधा होता है। उपर्युक्त विवेचन से पश्चिमीकरण में निहित प्रक्रियाओं की जटिलता और विविधता का कुछ अनुमान हो सकता है। मैंने यह बात भी कही है कि प्रत्येक पश्चिमी देश पश्चिमीकरण के एक विशेष आदर्श का सूचक है और विभिन्न आदर्शों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में उसकी आबादी के अलग अलग समुदाय उस देश की संस्कृति के सामान्य पक्षों में सहभागी होने के साथ साथ उसके किन्हीं विशेष पक्षों का भी वहन करते हैं। आदर्श देश और ग्रहणकर्ता देश दोनों की आबादी के विभिन्न समुदायों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी से पश्चिमीकरण के विभिन्न पहलुओं को समझने में बहुत आसानी होगी कि किस तरह विशेष तत्वों का स्थानांतरण हुआ और स्थानांतरण के दौरान उनमें क्या परिवर्तन हुए। मैं अंग्रेज समाज के विभिन्न समुदायों के बारे में केवल संक्षेप में उल्लेख करके भारतीय समाज के समुदायों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा। भारतीयों को केवल स्याही शोक का दर्जा देना तो स्पष्ट ही वाहियात है। यह कहना ठीक नहीं कि जिस किसी बात के संपर्क में वे आए वे सब उन्होंने आत्मसात कर ली और जो वे कुछ आत्मसात किया उसे दूसरों तक संप्रेषित कर दिया। यद्यपि कुछ एक व्यक्तियों के साथ निस्संदेह ऐसा हुआ, वास्तव में पश्चिम के कुछ बातें ग्रहण की गई और कुछ अस्वीकार कर दी गई और ग्रहण की गई बातों में भी भारत में रूपांतर हुआ, जहां अंग्रेज संस्कृति और जीवन शैली के कुछ तत्वों ने सभी भारतीयों को आकर्षित किया, वहीं अंग्रेज संस्कृति के विभिन्न पक्ष भारतीय जनता के विभिन्न समुदायों को विशेष रूप से आकर्षक लगे।